الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضرت صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ شادی کرتے ہیں اور شادی کرنے کے بعد گھر میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں اور بوڑھے بھی لڑتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
ان سب کو چاہیے کہ یہ پکے پکے دعوت اسلامی میں آ جائیں. جب عاشقان رسول کے ماحول میں آ جائیں گے نا، اسلامی بہنوں کا بھی تو ہے نا اپنا دین ماحول، یہ سنتے رہیں گے بیانات، روایات، آیات، واقعات بزرگوں کے، تو انشاءاللہ ان کی تربیت ہوتی رہے گی اور اس طرح یہ انشاءاللہ آپس میں لڑیں گے نہیں، جھگڑیں گے نہیں. اور خاص کر نوجوانوں کو تو ویسے بھی چاہیے کہ اپنے اگر ماں باپ بوڑھے ہیں تو ان سے جھگڑے نہ کریں، بلکہ ان کا احترام کریں. اگر ماں باپ کچھ بول بھی دیں تو ایج فیکٹر ہوتا ہے، کبھی چڑچڑا پر آ جائے، غصہ آ جائے تو برداشت کر لے، آنا نہیں چاہیے، غصہ آئے بھلے لیکن اس کو برداشت بزرگوں کو بھی کرنا چاہیے. لیکن جوانوں کو یہ عرض کروں گا کہ اگر ہو جائے ایسا تو آپ صبر کیا کریں. دیکھو حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں کہ حدیث پاک میں جو نوجوان بوڑھے آدمی کی عزت کرتا ہے، اللہ پاک بڑھاپے میں اس کی عزت کے لیے کسی کو مقرر کر دیتا ہے. یہ سنن ترمذی، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2029. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں، جو ابھی حدیث ہم نے بیان کی نا، اس حدیث پاک میں لمبی عمر کی بشارت ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھوں کی عزت کرنے کی توفیق اسی شخص کو ملتی ہے جس کے لیے اللہ پاک نے لمبی عمر کا فیصلہ فرما دیا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو بوڑھوں کی عزت کرتا ہے، جو جوان بوڑھوں کی عزت کرتا ہے، تو اللہ پاک بڑھاپے میں اس کی عزت کے لیے کسی کو مقرر کر دیتا ہے، یعنی یہ عزت کرنے والا بھی بوڑھا ہوگا، یہ اس میں اشارہ ہے نا. یہ امام غزالی نے اس کو واضح کر دیا. تو اس لیے وہ نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ بزرگوں کی عزت کریں، اگر یہ کبھی غصے میں آ بھی جائیں تو صبر کا ثواب کمائیں، کہ صبر کے بھی اپنے فضائل ہیں. وہ صبر کے تعلق سے میں آپ کو بڑا پیارا شعر سناؤں. حضرت قبلہ وہ محمد میاں رحمت اللہ علیہ کھڑی شریف والے بزرگ، سنا ہو شاید اب نام، تو وہ اپنا تخلص جو ہے وہ شعر میں محمد بولتے تھے، اس میں محمد لفظ آئے گا تو اس کا مطلب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے بلکہ کھڑی شریف والے یہ جو بزرگ ہیں یہ ہے. مٹھا میوا تیری دیوے پھر بھی پتھر کھاوے، صبر میری دا ویکھ محمد او نیکیاں کر دی جاوے. میاں محمد بخش کھڑی شریف والے بزرگ رحمت اللہ علیہ، کوئی اس کا مجھے مطلب بتائے گا؟ قاضی افضل
ماشاءاللہ،
یہ ہمارے بہت پرانے مہربان ہیں، یہ شیخو پورا کے اب بھی وہی ہیں نا، ان کے مکان بھی حاضر ہوا تھا. حاجی یاسر آپ کے ہوتے تھے، حاجی شاہد نگران پاک کے وہ बड़े भाई।
हाँ जी, हाँ जी।
ये उन दिनों मतलब अब तो केप टाउन में।
माशाल्लाह। शेर एक दफा दोबारा रिपीट कर दें आप जरा।
मिठा मेवा तेरी देवे फिर भी पत्थर खावे, सब्र मेरी दा वेख मुहम्मद ओ नेकियां कर दी जावे। शायद ज्यादा मुश्किल नहीं है ये।
इस शेर का मकसद ये है कि बेरी का जो दरख्त है उसके ऊपर कांटे होते हैं, लेकिन फल जो लगता है उसका मीठा होता है। जब लोग उससे फल उतारते हैं तो उसको पत्थर मारते हैं, लेकिन वो फिर भी सब्र करती है और लोगों को मीठा फल देती है।
माशाल्लाह, काफी हद तक मतलब उसमें कांटे का तस्करा नहीं है।
ठीक है,
इन्हें बेर मीठे होते हैं। बेरी माने बेर का दरख्त है ना, तो बेरी मीठे मीठे फल देती है, इसके बावजूद फिर भी पत्थर खावे। यानी एक तो मीठे बेर देवे ने पत्थर भी खावे,
पत्थर भी खावे,
लेकिन इसका सब्र तो देखो भी, पत्थर खाती है फिर भी लोगों के साथ नेकियां करती है, इसको मेवा देती है, बेर का फल देती है। तो ये हमारे लिए भी इसमें नसीहत है कि अगर हमें लोग तंग भी करें परेशान भी करें तो जिसके अंदर जो होता है वो निकलता है। अपने अंदर नेकी होगी तो नेकी निकलेगी, चाहे कोई कितना ही हमें जाड़े लिताड़े। नौजवान बेटे नौजवान बेटियां अगर आपके साथ कुछ मसला कर दें, आप इनको फल देते रहें, दुआएं देते रहें, और हाँ मुस्कुराते रहें। वो हमारी एक कहावत है, हंसे तेनू घर वसे,
माने
जो हंसता है उसका घर बसता है। चिढ़ते रहेंगे गुस्सा करेंगे जब लड़ेंगे तो फिर आपको अकेला कर देंगे, आपस में यूनियन बना लेंगे। अभी अब्बू बुढ़े हो गए और चिड़चिड़ापन आ गया, और जब देखो ये कुड़कुड़ करते हैं, टक टक करते हैं, झगड़े करते रहते हैं, समझे? तो एहसान हो गया, फिर ये बोलेंगे या अल्लाह इसकी मिट्टी ठंडी कर दे। हाँ, ये जब बिल्कुल बेजार हो जाते तो आखिर में लास्ट मोमेंट पर ये इस दुआ पर भी आ सकते हैं। तो इसलिए आपको, हम लोग बूढ़े हैं ना, तो हमें नौजवानों के जज्बात थोड़ा इनका एहतराम करना होगा। जहां जहां शरीयत इजाजत दे ना तो वहां हम खामोशी इख्तियार करें, करने दें इनको। जहां जो मतलब गलत करें, वो ऐसा गलत वो खिलाफ शरीयत है एक तो, दूसरा ये कि हमें ये गालिब गुमान होगा हम समझाएंगे तो ये मान जाएंगे, तो समझावे। अगर आप समझते कि मानेगा तो नहीं, तो फिर उस वक्त भी कुफ्ल मदीना, फिर ये फिर हमको मेवा खिलाएंगे। ये बेरी के दरख्त नहीं कि पत्थर खा के मेवा दें, ये फूल इनको देंगे तो ये मेवा देंगे। प्यार का फूल, शफकत का फूल, मोहब्बत का फूल बोलना नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात बुजुर्ग ये बोलते हैं कि नहीं मैं हक बात करता हूं, मेरी बात, मेरा तजर्बा, मैंने अपनी जिंदगी तजर्बात में गुजारी, मेरे बाल नजले से नहीं तजर्बात की भट्टी में सफेद हुए। अगर ये हम अक्लमंदियां करेंगे ना तो उनकी समझ में नहीं आएगी, फिर लड़ाई हो जाएगी। इसलिए आप लड़ेंगे नहीं, हंसते रहेंगे मुस्कुराते रहेंगे। हाँ, तो ये देखो आपको ये आंखों पे बिठाएंगे, वरना मैंने ऐसे बूढ़े बूढ़ियां देखी हैं कि जो बेचारे वाकई इन्हें तजर्बा हुए, ये आ जाते हैं, बेटी ने निकाल दिया, बेटों ने निकाल दिया, मारते हैं, लड़ते हैं, खाना नहीं देते। मैंने खुद देखे बेचारे अपने को रेह माए, अब इसको क्या करें, कहां रखें इसको, समझा बुझाकर घर ही भेजना होता है प्यार मोहब्बत से। तो ये इसलिए मैं आप, चूंकि मेरी बिरादरी है तो आप ऐसे बने कि आपकी औलाद आपको याद ही करती रहे, आपको पूछती रहे, खैर खैरियत दरियाफ्त करे। अब जब हम लोग जो है ना ये दवाओं पे चलने वाली हमारी बिरादरी दवाएं, यक बुढ़ापा सदैव है ना, 100 बीमारियां होती है बुढ़ापे में, तो ये औलाद को हमने खुश रखा ये हमारी खिदमत करेगी, हमने इनको बदजन किया तो शायद ये कतराई हमसे, गुस्सा आ जाए तो चुप हो जाए। गुस्सा आएगा बुढ़ापे में, सुना है गुस्सा ज्यादा आता है, मुझे कम आता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जनरली सुना है कि गुस्सा ज्यादा आता है, चिड़चिड़ापन ज्यादा हो जाता है बुढ़ापे में, ये आम है मतलब। लेकिन कुछ ऐसे बूढ़े भी होंगे जिनको कम आता हो, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उन कम वालों में शामिल हुआ, क्योंकि बुढ़ापे में गुस्सा आता है तो फिर ये दिल आजारियां बहुत हो जाती हैं, चिड़चिड़ापन में दिलाजारियां, और अल्लाह हमको गुनाहों से माफ़। بچہ اگر بھلے آپ کو آتا بھی ہے بالفرض، آپ اس کوالٹی کے غصہ آتا ہے صبر کریں گے ثواب زیادہ ملے گا، ہم سے جیت جائیں گے. جن کو غصہ نہیں آتا وہ صبر کیا کرے گا، غصہ آئے گا پھر صبر کرے گا، پھر جنت کے میوے اس کے لیے تیار ہو رہا ہے. اور جنت کے میوے جو ہے نا، جنت کے میوے کھانے کے لیے پتھر نہیں مارنے پڑتے، ہاں یہ بھی ہے، اللہ کی رحمت سے عطا ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پاکستان نیوی سے ریٹائرڈ ہوں، میری عمر 61 سال ہے، میری عمر 61 سال ہے.
61 اللہ
امیر علیہ سنت، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ آپ نے جامعات میں کوئی عمر کی قید نہیں رکھی، جس کی وجہ سے ہم بوڑھوں کو بھی علم سیکھنے کا موقع فراہم کیا ہے. میں اس وقت جامعۃ المدینہ جاری قصد میں درجہ اولا کا طالب علم ہوں. آپ سے مزید رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دنیا بھر میں کس طرح جو ہے نا علم حاصل کر کے تو اس کو پھیلا سکیں.
ماشاءاللہ، اپنے کردار اگر درست ہوگا نا تو لوگ ہمارے قریب آئیں گے، اور ہم اس کو نماز کی، نیکی کی دعوت دیں، سنت پر عمل کرنے کی دعوت دیں، اور بس وہ کنٹرول کرنا ہے، بولنا کم ہے، کیونکہ عمر بڑی ہو جاتی ہے نا تو بندہ بولنے بھی لگتا ہے، اپنے حساب سے صحیح بول رہا ہوتا ہے لیکن لوز ٹاکنگ کر رہا ہوتا ہے، نہ بولنے کا بھی بول جاتا ہے، اور مطلب بس وہ تو تڑا کیے وہ ابے تبے، پھر لوگ قریب نہیں آتے. اس لیے بزرگوں کو تو میں تو مدنی قافلے میں بھیجنے کا فیورر ہی نہیں ہوں. ایسا لوگ اگر یہ بزرگ اسی طرح کے ہوئے انہیں یوں تو نکھرے نکھرے نظر آئیں گے، اپنے سامنے بیٹھے ہوں گے نا تو اپنے کو لگے گا کہ واہ یہ ہے اللہ کا ولی. پھر جب قافلے میں مدنی قافلے میں گیا اور اگر پھرکڑی گھومی سارا قافلہ جو سب اتاس ہو جائے گا. اس خطرے کے پیش نظر جب تک یعنی کہ تجربہ نہ ہو نا قافلے میں، نہ ان کو جانا چاہیے نہ ان کو قبول کرنا چاہیے. غلط میرے خیال میں کسی حد تک صحیح ہوں اپنی بات میں، کہ بزرگوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، سوئی اٹک گئی خلاص سمجھا نہیں سکتے، نوجوان کہاں سمجھا سکیں گے. تو میری اب ہاں میں کر رہے کہ میں ہوں آپ کی برادری کا نا، ہاں تو اس لیے وہ اپنے بڑھاپے کے حساب سے ایک میں تو شاید سب سے بڑا ہوں آپ سے عمر میں. میری عمر پتا آپ کو؟ 26. قاضی افضل کو یاد ہے، ان کا حفظ اچھا ہے. یہ اب جو 26ویں شریف تک میں زندہ رہ گیا اگر ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے. ہمیں موت تو پیش نظر رکھنی چاہیے، چاہے جوان ہو بوڑھا ہو، ہر ایک کو موت کو یاد رکھنا چاہیے. تو اگر میں زندہ رہ گیا 26ویں تک تو کیلنڈر کے اور حساب سے جو پاسپورٹ کے حساب سے جو لگایا تھا سب، تو میں 75 سال پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم، اور 75 پورے ہو جائیں گے، 76 میں 76 میں داخل ہو جاؤں گا. تو یوں لگتا ہے کہ میں آپ سب سے بڑا ہوں عمر میں، بظاہر کوئی ہے مجھ سے بڑا ہو تو بتا دیں. عمر میں بڑا نہیں، مرتبے میں سب سے چھوٹا. یعنی یہ میرا کمال دیکھو کہ میں ایک ہی وقت میں سب سے چھوٹا بھی ہوں اور سب سے بڑا بھی ہوں. بات وہ کرنی ہے جو شریعت کے دائرے سے نہ نکلے، تو میں نے جو بات کی صحیح کی ہے کہ میں ایک ہی وقت میں اس محفل میں سب سے چھوٹا بھی ہوں اور سب سے بڑا بھی ہوں. اچھا اس کی بھی تشریح کر دوں، اس کی تشریح میری برادری یہ بولے ہاں ہاں کرے، جو آپ کو سمجھنا ہے ان کو سمجھنا ہے، کل اختیار ہے سب کو، جس کو جو سمجھنا ہو. میری سن تو لیجیے آپ سکر سن، یہ میں بڑا ہوں سب سے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ جتنے ادھر میرا خیال 50-60 تو ہوں گے کہ نہیں، کم ہے یہ
60 کے بھی ہیں، 65 بھی ہے. ہاں یہ دیکھیں
بزرگوں قربا سیلا تو بزرگوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے، کہاں کچھ جاتا ہے سمجھتے کچھ ہے، یہاں جاؤ تو شاید سمجھ پڑے آپ کو. नहीं आते ही इन्होंने एक तो फायर कर दिया ना, हम सब बुजुर्गों की तरफ से आपको ही दोबारा, मैंने कहा आपको जवानी कुर्बान करनी पड़ेगी इनके कदमों पर, तभी हम में शामिल हो गए, वरना तो ये फिर सेट हो गया।
ये आपको थोड़ा गौर करना पड़ेगा, जो भी अमीर सुनंद ने फरमाया ना, एक बड़ी उम्र का आदमी था बाबा
जी, जी
एक बड़ी उम्र का आदमी था, इसको मतलब के शादी जो थी ना वो एक जवान औरत से करनी थी, अब उसको मिले नहीं, वो एक औरत मिली उसको, तो उससे शर्त ये रखी थी कि तुम हमेशा जवानों के साथ बैठोगे, बूढ़ों के साथ नहीं बैठोगे। उसने कहा ठीक है, तो वो लेट आता तो हमेशा दीवार फलांग कराता था, हमेशा दीवार फलांग कराता था।
कौन? बूढ़ा?
बूढ़ा।
ये भी शर्त रखी थी दीवार फलांग?
हाँ, दीवार फलांग कराना पड़ेगा, उसने शर्त की थी दीवार फलांग कराओगे कभी भी और बूढ़ों के साथ नहीं बैठोगे। तो एक दिन वो बेचारा आया ना, तो वो दीवार नहीं फलांग सका, दरवाजा के जरिए दाखिल हुआ, तो बीवी ने कहा लगता है कि आज तुम बूढ़ों के साथ बैठे, देखा आज मैं बूढ़ों के साथ बैठा। तो उसको याद आ गया कि मैं बूढ़ों के साथ बैठा था। तो यूं तो अमीर सुन्नत एक वजात कर रहे हैं इस वक्त, और उम्र में तो भाई, तो आप वजात क्या कर रहे थे उम्र का ने कुछ हुजूर
जी,
अभी उम्र की ने कुछ वजात कर रहे थे आप?
हाँ, मैं अब एक तो मैंने बता दिया कि मैं सबसे बड़ा हूं, तो इसके माना क्या है? आधा इन पर छोड़ा, ये जवाब दे कि मैं सबसे सबसे छोटा हूं, इसका मतलब क्या है?
ये कुछ और कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं?
बिल्कुल नहीं गुना, मैं भी जरा आपकी उम्र का उसे आप पाड़ दी मैंने, लेकिन वो के
माइक में
अमल में आप बड़े हैं,
आना इनको बोलने दो। जी जी नहीं, आपका जवाब भी इनका जवाब भी सब रिकॉर्ड हो रहा है, अभी तक कोई फाइनल जवाब जो मेरे जहन में वो अभी आते आएगा।
मैं अर्ज कर रहा था कि गुनाहों में आप सबसे छोटे हैं हमसे,
वो आपका जवाब है, और कोई जवाब अगर हो किसी के पास?
आज जी और इन सारी में आप छोटे हैं,
बराबर फरमाया। मैं आज
भाई सवाल बदलो है।
नहीं नहीं बराबर
ना, ना, आज ही मेहरबानी देनी ना करो
आप, इशारत
आज ही मेहरबानी होगी
जी, नाजरीन के अट्रैक्शन थी
ये, अट्रैक्शन नहीं होगा नाजरीन, टीवी बंद कर देगा हम लोगों का।
ना ना बोले जी और कोई ना ना, वाकई जो लोगों को इसमें दिलचस्पी रहेगी देखने वालों के, बुजुर्गों के जवाब भी रंग रंगीले मुख्तलिफ टेस्ट जायके। जी और कोई बोले कि मैं सबसे छोटा हूं? आप बिल्कुल बड़ा हूं, उम्र में बड़ा हूं, बिल्कुल उम्र में बड़ा हूं आप सबसे, वो तो मैंने कह ही दिया, सुभान अल्लाह, ऊंचाई बैठा हूं मैं। और बोलो
अमीर सुन्नत आजीजन अपने आप को जो है जो बयान करना चाह रहे हैं आप सब समझ रहे हैं, और समझने की कोशिश ये उनका है, क्योंकि इल्म व अमल में क्या, जिन्होंने दुनिया में ये पैगाम को दावत इस्लामी को इतना आम कर दिया, और इतना हमें यानी कि आज हम इनकी बदौलत यहाँ बैठे हुए, तो उनकी आजीजी है, जो पूछना चाह रहे वो आजीजन जो कहना चाह रहे वो हमारे जबान पे आ नहीं सकता, कोई जवाब दे नहीं सकता। आप सब समझ जाएं मुर्शिद करीम क्या पूछना चाह रहे हैं, मुर्शिद करीम का जो सवाल है वो
आपने एक और सवाल छोड़ दिया इन पर, मेरा सवाल जो
सवाल जो आपने हम पे छोड़ा है वो हम
आप तो
पूरे कोई बयान नहीं कर
आप सके। पूछ गए वैसे हनीफ भाई बहुत पुराने हैं ना, गुलजार अभी मैं इज्तवा होता था जब से, ये सबका जवान नहीं है, बूढ़े तो अब भी नहीं हुए आप, 60 के नीचे ना आप तो,
57 अब
57 तब 60 साल का बूढ़ा होता है, ये बूढ़ों में घुस गई है बूढ़ों के रूप में आकर।
बापू मुझे इसलिए ज्यादा वो तरकीब लेके होते आप अभी जवान ही हो तरकीब
नहीं, माशाल्लाह ही है, हाँ बहुत पुराने मतलब वो दावत सबसे शायद हो सकता है पुराने हुई दावत इस्लामी के सबसे, आज ये सलीम ही बहुत पुराने आप तो 60 57 है आप भी, अच्छा माशाल्लाह।
मोहम्मद हनीफ अतारी वाकंड से, उम्र 61 साल। मेरा आप अमीर अहले सुन्नत से सवाल है कि हमारे बाद बुजुर्ग इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें 60-70 साल 80 साल को पहुंच जाते हैं, लेकिन वो घर के मामलात
अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, शादी ब्याह हो उसमें वो कहते हैं कि ये चीज़ इनको दे दो, ये चीज़ दे दो, और जब रिश्तेदार आते हैं शादी पर उनको भी कहते हैं कि ये भी इनको दे दो, ये भी इनको दे दो, जबकि उनके बेटे और बहू इस हसीयत में नहीं होते वो उनकी जो डिमांड करते हैं वो पूरी कर सके। इसकी वजह से बाज़ घर के अंदर हालात भी बिगड़ जाते हैं। आप से इल्तिजा है कि आप मदनी फूल इरशाद फरमाएं किस बारे में हम बुजुर्गों को क्या करना चाहिए।
माशाल्लाह, अब वाकई है कि बाज बूढ़े जो है ना, अब जवानी से जहन उनका जो जिस तरह का बना होता है ना, तो बुढ़ापे में भी वो वैसे ही के वैसे रहते हैं, जबकि उन पर कोई दीनी माहौल का असर नहीं पड़ता, दीनी माहौल में नहीं होते वो। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह की तरफ मंसूब एक कौल है कि तेरी दाढ़ी तेरे बाद पैदा हुई, बंदा पहले पैदा होता, बच्चे की दाढ़ी कहाँ होती है, तेरी दाढ़ी तेरे बाद पैदा हुई मगर सफेद हो गई, और तू अभी तक वैसे का वैसा काला है, ने तेरे धंधे एक तो काले ही हैं, लेकिन दाढ़ी बाद में पैदा हुई और वो तो सफेद हो गई, यानी कि उस जौफ लग गया, बुढ़ापा आ गया इसका, सब कुछ हो गया, लेकिन बस तू वैसे का वैसा, तेरा दिल काला है, तेरे करतूत काले हैं। तो वाकई है तो ऐसा ही कि जवानी वाले अगर जवानी में नहीं सुधरते तो बाजू का बुढ़ापे में अक्सरियत ऐसी है कि वो सुधरती नहीं है। गफलत, नेकियों से दूरी, नमाजों से दूरी, सुन्नतों पर अमल करने से दूरी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, लड़ाई, झगड़े, पड्डे घरों में सुकून बर्बाद कर देते हैं। तो अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। हम बस वही कि घर में चलने के लिए मैंने पहले शुरू में बोल ही दिया ना, एक तो मतलब मेरा ख्याल में सारा बोल चुका, वे रिपीट होगा कि घर में कैसे रहना है। अब मगर वो चूंकि हफ्ज़े कमजोर हो जाते हैं तो आप सबको हो सकता है याद ना हो।
दावतों के ताल्लुक से जो इन्होंने कहा ना कि जब घर में दावत होती है तो जैसे कि बड़े घर के बड़े होते तो वो अपने बहू को बच्चों को कहते रहते कि इनको भी ये दे दो, इनको भी ये दे दो, हालांकि वो बच्चों की हैसियत नहीं होती। तो ऐसे मौके पर भी इन्हें अगर जैसे बच्चे अगर पूछ भी लें क्या क्या करना चाहिए तो अगर ये जुमला कहते कि बेटा जो भी आप लोगों को बेहतर लगता है ना वो कर लीजिए तो ये मुनासिब रहेगा।
इसमें अब वो के मौके की मुनासिबत से ही हो।
अच्छा,
बाजों का तो ये नहीं भी बोलते होंगे गुर्बत की वजह से, खुद भी इस पर समझते होंगे। हर बुजुर्ग ऐसा नहीं होता जैसा सवाल में कहा गया, फर्क होता है। तो ये कि अगर वाकई वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर वो डालते हैं बोझ तो फिर बेटा दरखास्त करे कि अबू ये कैसे होगा, मेरी इनकम ये, अपने पास कहाँ मतलब इतने पैसे कि सबको दे। फिर कोई रह गया तो फिर शिकवा होगा कि हमें नहीं दिया, या किसी को अच्छा चला गया, किसी को थोड़ा कम अच्छा गया तो बोलेंगे उसको ये दिया हमको ये दिया, ये तो शिकवा गिला शिकवा तो माशरे में होता ही है। तो यूँ मौके की मुनासब से हो, जवानों को एहतराम ही करना चाहिए अपने बुजुर्गों का, आवाज़ ऊँची नहीं करनी चाहिए, आँख से आँख नहीं मिलानी चाहिए, और बुजुर्गों को चाहिए कि शफकत ही करे। अगर बेटा कुछ कहे वो तो नहीं अगर अपनी समझ में आता तो चुप हो जाए कि ठीक है बेटे जो तुमको मुनासिब लगे करना, लेकिन जो भी शरीयत कहे वो करना। नहीं, एहतियात अच्छी है कि वो ये गुनाह के ताल्लुक से भी वो कहेंगे कि हमको गाने बाजों का फंक्शन करना है, डांस की महफिल करनी है, तो जो माहौल में ना आप तो सर ये तो गुनाह है, तो आप ये तो बोल सके ना कि है गुनाह का काम, तू नहीं मानता तो ठीक कर ले, ये नहीं कर रहा है ये तो इजाजत हो जाएगी, तो है गुनाह का काम, हमें गुनाह नहीं करने चाहिए। भले वो 100 मरतबा बोले करना है, बेटा गुनाह का काम तो मैं कैसे आपको साथ दूं इसमें, ये तो कर रही इस तरह का तो करना ही होगा, ये जरूरी है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
अमीरे अहले सुन्नत प्यारे, अमीरे